नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन जाएंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये यात्रा भारत जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करेगी। श्री मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की इथियोपिया की पहली यात्रा है। यह यात्रा इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ एबी अहमद अली के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को सुल्तान हैथाम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की यह दूसरी यात्रा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन परिवार, सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिए साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार चुनावों में जीत के बाद गठबंधन के सहयोगियों की ये पहली बड़ी बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम में संशोधन किया है। इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में पुनरीक्षण कार्य अब 14 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कार्य की समय सीमा 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 26 दिसंबर तक चलेगा। राज्यसभा में कल चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान राजनीतिक दलों को नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई है।
पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एक मेव एब्सोल्यूट वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत। आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है।
कांग्रेस के अजय माकन ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल मुंबई में इटली के उप प्रधानमंत्री अंतोनियो ताजानी के साथ बैठक की। ये बैठक दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी की रफ्तार बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने, स्वच्छ गतिशीलता, हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग प्रगाढ़ करने पर केंद्रित थी। इंडिया AI मिशन ने शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असल दुनिया पर पड़ने वाले असर पर फेसबुक के लिए यूज केस हेतु ग्लोबल कॉल शुरू की है। केस के अध्ययन के लिए कॉल इस महीने की 25 तारीख तक खुली रहेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने लगातार स्थायी जीवन शैली, जलवायु अनुकूलन, विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग का समर्थन किया है। श्री सिंह ने केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र की उच्च स्तरीय खंड में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं और जोशीली टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शानदार उपलब्धि देश भर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। दक्षिण अफ्रीका ने चंडीगढ़ में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 51 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 214 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 5 गेंद शेष रहते केवल 162 रन पर आउट हो गई। इससे पहले मेहमान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 213 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।